इन्द्रियार्थेषु वैराग्य मनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। इंद्रियों के विषयों में वैराग्य का होना, अहंकार का भी न होना और जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा व्याधियों में दुख रूप दोषों को बार बार देखना। व्याख्या, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम्, लोक परलोक के शब्दादि समस्त विषयों में इंद्रियों का खिंचाव न होना ही इंद्रियों के विषय में राग रहित होना है। इंद्रियों का विषयों के साथ संबंध होने पर भी तथा शास्त्र के अनुसार जीवन निर्वाह के लिए इंद्रियों द्वारा विषयों का सेवन करते हुए भी साधक को विषयों में राग आसक्ति प्रियता नहीं होनी चाहिए। उपाय, विषयों में राग होने से ही विषयों की महत्ता दिखती है, संसार में आकर्षण होता है और इसी से ही पाप होते हैं। अगर हमारा विषयों में ही राग रहेगा तो तत्वबोध कैसे होगा, परमात्म तत्व में हमारी स्थिति कैसे होगी? अगर राग का त्याग कर दे तो परमात्मा में स्थिति हो जाएगी, ऐसा विचार करने से विषयों से वैराग्य हो जाता है। दूसरा उपाय, बड़े बड़े धनी शूरवीर राजा महाराजा हुए और उन्होंने बहुत से भोगों को भोगा, पर अंत में उनका क्या रहा? कुछ नहीं रहा। उनके शरीर कमजोर हो गए और अंत में सब मृत्यु के ग्रास बन गए। इस प्रकार विचार करने से भी वैराग्य हो जाता है। तीसरा उपाय, जिन्होंने भोग नहीं भोगे हैं, जिनके पास भोग सामग्री नहीं है, जो संसार से विरक्त है, उनकी अपेक्षा जिन्होंने बहुत भोग भोगे हैं और भोग रहे हैं, उनमें क्या विलक्षणता, क्या विशेषता आई? कुछ नहीं आई। प्रत्युत, भोग भोगने वाले तो शोक चिंता में डूबे हुए हैं। ऐसे ऐसे विचार करने से भी वैराग्य होता है। अनहंकार एवच, प्रत्येक व्यक्ति के अनुभव में मैं हूं इस प्रकार की एक वृत्ति होती है। यह वृत्ति ही शरीर के साथ मिलकर मैं शरीर हूं इस प्रकार एक देशीयता अहंकार उत्पन्न कर देती है। इसी कारण शरीर नाम क्रिया पदार्थ भाव ज्ञान त्याग देश काल आदि के साथ अपना संबंध मानकर जीव ऊंच नीच योनियों में जन्मता मरता रहता है। 13वें अध्याय का 21वां श्लोक। यह अहंकार साधन में प्राय बहुत दूर तक रहता है, यद्यपि इसकी वास्तविक सत्ता नहीं है, फिर भी स्वयं की मान्यता होने के कारण व्यक्तित्व के रूप में इसका भान होता रहता है। भगवान द्वारा ज्ञान के साधनों में इस पद का प्रयोग किए जाने का तात्पर्य शरीर में माने हुए अहंकार का सर्वथा अभाव करने में है, क्योंकि जड़ चेतन का यथार्थ बोध होने पर इसका सर्वथा अभाव हो जाता है। मनुष्य मात्र अहंकार रहित हो सकता है, इसलिए भगवान यहां अनहंकार पद से अहंकार का त्याग करने की बात कहते हैं। अभिमान और अहंकार का प्रयोग एक साथ होने पर उनसे अलग अलग भावों का बोध होता है। सांसारिक चीजों के संबंध से अभिमान पैदा होता है, ऐसे ही त्याग वैराग्य विद्या आदि को लेकर अपने में विशेषता देखने से भी अभिमान पैदा होता है। शरीर को ही अपना स्वरूप मानने से अहंकार पैदा होता है, या अहंकार पद से अभिमान और अहंकार दोनों के सर्वथा अभाव का अर्थ लेना चाहिए। मनुष्य को नींद से जागने पर सबसे पहले अहम अर्थात मैं हूं इस वृत्ति का ज्ञान होता है, फिर अमुक शरीर नाम जाति वर्ण आश्रम आदि का हूं ऐसा अभिमान होता है, यह एक क्रम है। इसी प्रकार पारमार्थिक मार्ग में भी अहंकार के नाश का एक क्रम है। सबसे पहले स्थूल शरीर से संबंधित धनादि पदार्थों का अभिमान मिटता है, फिर कर्मेंद्रियों के संबंध से रहने वाले कर्तृत्वाभिमान का नाश होता है, इसके बाद बुद्धि की प्रधानता से रहने वाला ज्ञातापन का अहंकार मिटता है, अंत में अहम वृत्ति की प्रधानता से जो साक्षीपन का अहंकार होता है वह भी मिट जाता है, तब सर्वत्र परिपूर्ण सच्चिदानंद घन स्वरूप स्वतः रह जाता है। उपाय, अपने में श्रेष्ठता की भावना से ही अभिमान पैदा होता है। अभिमान तभी होता है जब मनुष्य दूसरों की तरफ देखकर ये सोचता है कि वे मेरी अपेक्षा तुच्छ हैं। जैसे गांव भर में एक ही लखपति हो तो दूसरों को देखकर उसको लखपति होने का अभिमान होता है, परंतु अगर दूसरे सभी करोड़पति हो तो उसको अपने लखपति होने का अभिमान नहीं होता। अतः अभिमान रूप दोष को मिटाने के लिए साधक को चाहिए कि वह दूसरों की कमी की तरफ न देखे, प्रत्युत अपनी कमियों की तरफ देखकर उनको दूर करे। उसके मन में ये विचार रहना चाहिए कि तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। एक ही आत्मा जैसे इस शरीर में व्याप्त है ऐसे ही वे अन्य शरीर में भी व्याप्त है, सर्वगत है, दूसरा का 24। परंतु मनुष्य अज्ञान से सर्वव्यापी आत्मा को एक अपने शरीर में ही सीमित मानकर शरीर को मैं मान लेता है। जैसे मनुष्य बैंक में रखे हुए बहुत से रुपयों में से केवल अपने द्वारा जमा किए हुए रुपयों में ही ममता करके उनके साथ अपना संबंध मानकर अपने को धनी मान लेता है, ऐसे ही एक शरीर में मैं शरीर हूं ऐसी अहंता करके वह काल से संबंध मानकर मैं इस समय मैं हूं, देश से संबंध रखकर मैं यहां हूं, बुद्धि से संबंध मानकर मैं समझदार हूं, वाणी से संबंध मानकर मैं वक्ता हूं आदि अहंकार कर लेता है। इस प्रकार के संबंध न मानना ही अहंकार रहित होने का उपाय है। तीसरा उपाय, शास्त्रों में परमात्मा का सच्चिदानंद घन रूप से वर्णन आया है। सत माने सत्ता, चित माने ज्ञान और आनंद माने अविनाशी सुख। ये तीनों परमात्मा के भिन्न भिन्न स्वरूप नहीं है, प्रत्युत एक ही परमात्म तत्व के तीन नाम हैं। अतः साधक इन तीनों में से किसी एक विशेषण से भी परमात्मा का लक्ष्य करके निर्विकल्प हो सकता है। निर्विकल्प होने से उसको परमात्म तत्व में अपनी स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो जाता है और अहंकार का सर्वथा नाश हो जाता है। इसको इस प्रकार समझना चाहिए। पहला, कह सत परमात्म तत्व सदा से ही था, सदा से है, सदा ही रहेगा, वह कभी बनता बिगड़ता नहीं, कम ज्यादा भी होता नहीं, सदा ज्यों का त्यों रहता है, ऐसा बुद्धि के द्वारा विचार करके निर्विकल्प होकर स्थिर हो जाने से साधक का बुद्धि से संबंध विच्छेद हो जाता है और उस सत्तत्व में अपनी वास्तविक स्थिति का अनुभव हो जाता है। ऐसा अनुभव होने पर फिर अहंकार नहीं रहता। खैर चित जैसे प्रत्येक व्यक्ति के शरीर आदि अहम के अंतर्गत दृश्य है, ऐसे ही अहम भी मैं तू और यह वह के रूप में एक ज्ञान के अंतर्गत दृश्य है। इस विषय को एक दृष्टांत से समझना चाहिए। किसी सेठ ने सुना कि अमुक दुकान में इतना नफा हुआ है और यह भी सुना कि अमुक दुकान में इतना नुकसान हुआ है। इस प्रकार नफा और नुकसान इन दोनों में तो फर्क है, परंतु इन दोनों के ज्ञान में कोई फर्क नहीं है। ज्ञान तो एक ही है। अगर ज्ञान एक न होता तो नफा और नुकसान दोनों की भिन्नता का ज्ञान ही कैसे होता। इसी तरह मैं तू यह और वह ये चारों अलग अलग होने पर भी इनका प्रकाशक ज्ञान एक ही है। जिस सामान्य प्रकाश में क्रिया होती है उसी प्रकाश में तू यह और वह में भी क्रिया होती है। उस सामान्य प्रकाश में मैं तू यह और वह का भेद नहीं है। उस सामान्य प्रकाश का संबंध यदि है तो मैं तू यह वह इन चारों के साथ है, और यदि नहीं है तो किसी के साथ नहीं है। उस ज्ञान में निर्विकल्प होकर स्थित हो जाने से परमात्म तत्व में स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो जाता है, फिर अहंकार नहीं रहता। आनंद साधक लोग प्राय बुद्धि और अहम को प्रकाशित करने वाले चेतन को भी बुद्धि के द्वारा ही जानने की चेष्टा करते हैं। वास्तव में बुद्धि के द्वारा जाने हुए विषय को ज्ञान की संज्ञा देना ही और उस सीखे हुए ज्ञान से अपने आप को ज्ञानी मान लेना बड़ी भारी भूल है। बुद्धि को प्रकाशित करने वाला तत्व बुद्धि के द्वारा कैसे जाना जा सकता है। यद्यपि साधक के पास बुद्धि के सिवाय ऐसा और कोई साधन भी नहीं है जिससे वह तत्व जाना जा सके, तथापि बुद्धि के द्वारा केवल जड़ संसार की वास्तविकता को ही जाना जा सकता है। बुद्धि जिससे प्रकाशित होती है उस तत्व को बुद्धि नहीं जान सकती। उस तत्व को जानने के लिए बुद्धि से भी संबंध विच्छेद करना आवश्यक है। बुद्धि को प्रकाशित करने वाले परमात्म तत्व में निर्विकल्प रूप से स्थित हो जाने पर बुद्धि से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। फिर एक आनंद स्वरूप जहां दुख का लेश भी नहीं है परमात्म तत्व ही शेष रह जाता है, जो स्वयं ज्ञान स्वरूप है और सत स्वरूप भी है। इस प्रकार तत्व में निर्विकल्प हो जाने पर अर्थात चुप हो जाने पर आनंद ही आनंद है ऐसा अनुभव होता है। ऐसा अनुभव होने पर फिर अहंकार नहीं रहता। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और रोगों के दुख रूप दोषों को बार बार देखने का तात्पर्य है। जैसे आवा में मटका पकता है ऐसे ही जन्म से पहले माता के उदर में बच्चा जठराग्नि में पकता रहता है। माता के खाए हुए नमक मिर्च आदि क्षार और तीखे पदार्थों से बच्चे के शरीर में जलन होती है। गर्भाशय में रहने वाले सूक्ष्म जंतु भी बच्चे को काटते रहते हैं। प्रसव के समय माता को जो पीड़ा होती है उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, वैसी पीड़ा उधर से बाहर आते समय बच्चे को होती है। इस तरह जन्म के दुख रूप दोषों का बार बार विचार करके इस विचार को दृढ़ करना है कि अरे इसमें केवल दुख ही दुख है, जो जन्मता है उसको मरना ही पड़ता है, ये नियम है, इसमें कोई बच ही नहीं सकता। मृत्यु के समय जब प्राण शरीर से निकलते हैं तब हजारों बिच्छू शरीर में एक साथ डंक मारते हो, ऐसी पीड़ा होती है। उम्र भर में कमाए हुए धन से, उम्र भर में रहे हुए मकान से और अपने परिवार से जब वियोग होता है और फिर उनके मिलने की संभावना नहीं रहती है, तब ममता आसक्ति के कारण बड़ा भारी दुख होता है। जिस धन को कभी किसी को दिखाना नहीं चाहता था, जिस धन को परिवार वालों से छिपा छिपा कर तिजोरी में रखा था, उसकी चाबी परिवार वालों के हाथ में पड़ी देखकर मन में असह्य वेदना होती है। इस तरह मृत्यु के दुख रूप दोषों को बार बार देखे। वृद्धावस्था में शरीर और अवयवों की शक्ति क्षीण हो जाती है, जिससे चलने फिरने उठने बैठने में कष्ट होता है। हर एक तरह का भोजन पचता नहीं, बड़ा होने के कारण परिवार से आदर चाहता है पर कोई प्रयोजन न रहने से घरवाले निरादर अपमान करते रहते हैं। तब मन में पहले की बातें याद आती हैं कि देखो मैंने धन कमाया, इनको पाला पोसा, आज मेरा ये तिरस्कार कर रहे हैं। इन बातों को लेकर बड़ा दुख होता है। इस तरह वृद्धावस्था के दुख रूप दोषों को बार बार देखता रहे। यह शरीर व्याधियों का रोगों का घर है। शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर में वात कफ आदि से पैदा होने वाले अनेक प्रकार के रोग होते ही रहते हैं और उन रोगों से शरीर में बड़ी पीड़ा होती है। इस तरह रोगों के दुख रूप दोषों को बार बार देखें। यह बार बार देखने का तात्पर्य बार बार चिंतन करने से नहीं प्रत्युत विचार करने से है। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और रोगों के दुखों को बार बार देखने से अर्थात विचार करने से उनके मूल कारण उत्पत्ति विनाशील पदार्थों में राग स्वाभाविक ही कम हो जाता है और भोगों से वैराग्य हो जाता है। तात्पर्य है कि जन्म मृत्यु आदि के दुख रूप दोषों को देखना भोगों से वैराग्य होने में हेतु है, क्योंकि भोगों के राग से अर्थात गुणों के संग से ही जन्म होता है। कारणम गुण संगो से सदसद योनि जन्म सु 13:21। और जो जन्म होता है वह संपूर्ण दुखों का कारण है। भगवान ने पुनर्जन्म को दुखालय बताया है। पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम 8:15। शरीर आदि जड़ पदार्थों के साथ अपना संबंध मानने से, उनको महत्व देने से, उनका आश्रय लेने से ही संपूर्ण दोष पैदा होते हैं। देहाभिमानिनी सर्वे दोषा प्रादुर्भवन्ति, अध्यात्म रामायण उत्तरकांड। परमात्मा का स्वरूप अथवा उसका ही अंश होने के कारण जीवात्मा स्वयं निर्दोष है। चेतन आमल सहज सुख राशि मानस उत्तरकांड। यही कारण है कि जीवात्मा को दुख और दोष अच्छे नहीं लगते, क्योंकि वे उसके सजातीय नहीं है। जीव अपने द्वारा ही पैदा किए दोषों के कारण सदा दुख पाता रहता है। अतः भगवान जन्म मृत्यु आदि के दुख रूप दोषों को मूल कारण देहाभिमान को विचार पूर्वक मिटाने के लिए कह रहे हैं। परिशिष्ट भाव, एक दुख का भोग होता है, एक दुख का प्रभाव होता है। दुख से दुखी होना और सुख की इच्छा करना ये दुख का भोग है। दुख के कारण की खोज करके उसको मिटाना दुख का प्रभाव है। यहाँ दुख के प्रभाव को दुख दोषानुदर्शनम पद से कहा गया है। दुख का भोग करने से अर्थात दुखी होने से विवेक लुप्त हो जाता है, परंतु दुख का प्रभाव होने से विवेक लुप्त नहीं होता, प्रत्युत मनुष्य विवेक दृष्टि से दुख के कारण की खोज करता है और खोज करके उसको मिटाता है। सुख की इच्छा ही संपूर्ण दुखों का कारण है। कारण के मिटने पर कार्य अपने आप मिट जाता है, अतः सुख की इच्छा मिटने पर संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है।